ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आपके साथ हैं। इस मंच पर आज बात करते हैं अपने ही साहित्य की, संस्कृति की और अध्यात्म की। कहा जाता है और विश्व भर में इसे स्वीकारा भी जाता है कि भारत की मिट्टी में रचा बसा है अध्यात्म और उसकी नींव में है श्रीमद् भागवत गीता। जहां भारत में हम उसे पूछते भी हैं, वहां विश्व भर में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके लोग इसे जीवन जीने की कला के रूप में देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ऐसी पावन पुस्तक और उसके ज्ञान को आज कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे हैं। तो आज की इस कड़ी में इसी विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपको बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
सिस्टर शिवानी, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में अगर बात करें तो भारतीय परिपेक्ष में अगर हम देखते हैं तो इसे अध्यात्म की नींव माना जाता है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व में भी देखें तो इसकी नॉलेज को इंटरप्रेट करके हर लैंग्वेज में इसे लिखा गया है और फिर इसकी जो नॉलेज है उसको आज जो जीवन जीने का तरीका है उसमें इस्तेमाल किया है। इवन मैनेजमेंट की जो क्लासेस है उसमें किया जा रहा है, मतलब जीवन के हर एस्पेक्ट में इस ज्ञान को, इस नॉलेज को डाला गया है। तो फिर आज इस पर क्वेश्चन मार्क क्यों उठ रहे हैं?
जैसे आपने कहा कि जीवन जीने का तरीका, मैनेजमेंट वर्कशॉप्स, अगर हम उसको पहले देखें कि जो लोग आज हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, रिट्रीट्स करते हैं और उसमें वो ज्ञान की कुछ बहुत डीप गहरी बातें बताते हैं हमें कि इसको फिर लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सो नॉर्मली वी वुड सी के नॉलेज को सिंप्लीफाई करने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको सिखाने के लिए हम स्टोरीज का यूज करते हैं। हम कुछ सिचुएशंस को लेते हैं, उसको कुछ लोग मिलकर इनैक्ट करते हैं। आजकल मैनेजमेंट में ज्ञान की या कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाने के लिए जो विधि यूज की जाती है उसको रोल प्ले कहते हैं। कि एक सिचुएशन लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लेते हैं उसी टीम में से जो उस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को वो सिचुएशन दी जाती है और वो थोड़ी देर में आपस में डिसाइड करके सिचुएशन को इनैक्ट करके दिखाते हैं और इनैक्ट करते हुए उस सिचुएशन में वो पॉइंट, ज्ञान की वो पॉइंट या वो कॉन्सेप्ट जो वो ट्रेनर सिखा रहे हैं उसको वो लेकर आते हैं। तो इट इज सीन एज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। कि सिर्फ शब्दों में या सिर्फ गहरी बातें बोलने से कई बार हमें वो बात समझ नहीं आती है और अगर बात समझ में भी आ जाए तो यूज कैसे करनी है, यू नो, व्हेन आई गो बैक
समझ में आती है,
वो तरीका नहीं समझ में आता। सो इट वॉज ओनली थ्योरी एंड कई बार तो इतनी गहरी बातें होती हैं, इतनी डीप बातें होती हैं, वो भूल ही जाती हैं।
फिर कई बार हमें लगता है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल।
समटाइम्स अगर हम एक फुल डे प्रोग्राम अटेंड करें जिसमें बहुत बातें हमने डिस्कस की तो बाय द एंड ऑफ द डे हमें कोई बात याद नहीं रहती है। लेकिन यू नो याद क्या रहता है? जो उस ट्रेनर ने छोटी छोटी कहानियां सुनाई होती है,
जो इनैक्टमेंट होती है,
इनैक्टमेंट होती है वो याद रह जाती है, बाकी सारी बातें मेजोरिटी भूल जाती है। और अगर नहीं भी भूली होती तो एक दो दिन तक तो वो भूल जाती है, लेकिन लंबे समय तक वो कहानी याद रहती है। ये कहानी बताई थी तो वो कहानी और कहानी के साथ का मैसेज याद रहता है। एंड देन वी ऑल्सो शेयर दैट स्टोरी विद अ लॉट ऑफ पीपल। यू नो हम ज्ञान की वो बात शेयर नहीं कर पाएंगे घर जाके या अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन स्टोरी हम उसको पूरी स्टोरी सुना पाएंगे। नाउ दिस मीन्स के स्टोरी इनैक्टमेंट और इस तरह से मेथड जो यूज हो रहा है, दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन एंड अ लॉन्ग टर्म रिटेंशन। कि आप रिटेन करते हैं उस बात को, समझ लेते हो, औरों के साथ शेयर कर पाते हो और शायद इम्प्लीमेंट करना भी ट्राई कर पाते हो क्योंकि आपने उस सीन में उसको देखा है इम्प्लीमेंट होते हुए। जब हमें ये समझ में आता है सो वी कैन सी कि जब हमारे धर्म शास्त्र लिखे गए, द्वापर युग के शुरू से शास्त्र लिखे गए, एक एक होली किताब हर धर्म की जो लिखी गई, हर एक में ज्ञान की कितनी गहरी बातें थी, सच डीप प्रोफाउंड नॉलेज जो किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती थी, वो गहरी बातें थी। और वो गहरी बात उस समय पर अगर एज इट इज दी जाती तो शायद पूरी तरह से समझ में ना आती, और समझ में भी आती ना और उसको हम रिटेन नहीं कर पाते, सुनते और भूल जाते। सो द इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज, बात वही होगी, नॉलेज वही होगी, लेकिन उसको एक स्टोरी के राउंड उसको बनाया जाएगा जिसमें कैरेक्टर्स होंगे, हर एक कैरेक्टर का बहुत फाइनली स्केच्ड आउट रोल होगा, उसका रोल उस नॉलेज की वो पॉइंट को समझाने के लिए उसका वो रोल उस तरह बनाया जाएगा, और पूरी स्टोरी को करते करते या उन कैरेक्टर्स की अपनी अपनी स्टोरी जैसे जैसे वो बनती गई, ज्ञान की गहरी बातें लोगों को बताई गई, चाहे वो लव था, कंपैशन था, अंडरस्टैंडिंग था, चाहे अपने संस्कारों के साथ युद्ध करने की बात थी, गहरी बातें। आज भी अगर हम देखें कि जब हम धर्मशास्त्र अपने पढ़ते हैं, कई बार ज्ञान की वो बात तो भूल जाती है जो उसमें लिखी गई थी, लेकिन स्टोरी किसी को नहीं भूलती है। आज बच्चे बच्चे को रामायण पता है, आज बच्चे बच्चे को महाभारत की कहानी पता है, शायद ज्ञान की बात नहीं पता लेकिन कहानी हर एक को पता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन।
एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारे पास ये बिलीफ, खासकर अगर हम अपने देश में देखते हैं, कि सत्य की हमेशा जीत होगी,
वो इसीलिए
जीते इट इज रिटेन्ड देयर।
लेकिन अगर किसी ने हमें सिर्फ एक लाइन बताई होती कि सत्य की हमेशा जीत होगी, वो भूल गई होती, लेकिन क्योंकि हमें इन कहानियों के हिसाब से वो लाइन समझाई गई, हमने देखा प्रैक्टिकली उस कहानी के अंदर कि सत्यता की जीत होती है, दैट सेंटेंस रिटेन्स। अब लेकिन क्या हुआ, समय बीतता गया, जब वो शास्त्र लिखे गए, इट वॉज वेरी क्लियर ये मैसेज है और ये मैसेज को ट्रांसमिट करने का एक मीडियम है, तो द मेथड वॉज बींग यूज टू ओनली ट्रांसमिट द नॉलेज। धीरे 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 समय जब बीतता जाता है, आज अगर हम 10 लोग भी चाइनीज विस्पर्स खेलते हैं और एक लाइन के साथ खेलते हैं, यू नो वन लाइन विद 10 पीपल, 5 मिनट के अंदर वो लाइन फर्स्ट से 10th व्यक्ति तक जब पहुंचती है, तो कई बार हम कहते हैं एक वर्ड भी सेम नहीं था, यू नो पूरी लाइन चेंज हो गई। और ये है हमारे धर्मशास्त्र जो इतने डीप है, इतने प्रोफाउंड है, हजारों वर्ष और कितने न लोगों के थ्रू ये पास ऑन होकर आज मैसेज जब हमारे पास आ रहा है, तो कहीं न कहीं शायद उसका जो मैसेज देना था उस पर न ध्यान देकर हमने सिर्फ जो स्टोरी है उसी को मैसेज समझ लिया, जो कैरेक्टर्स उस स्टोरी को इनैक्ट कर रहे थे उनको ही रियल समझ लिया और जो स्टोरी का मैसेज था वो छोड़ दिया। अब जो श्रीमद् भागवत गीता है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, लेकिन जो तरीका उसमें है हमें वो सिखाने का, वो है एक युद्ध का मैदान, वो है कि युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। तो आज जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये तो युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है, ये तो किसी को बताया जा रहा है कि तुम्हें युद्ध करना है,
वायलेंस
की बात, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है तो तुम्हें हिंसा इज द वे, यू शुड फाइट, नॉट ओनली दैट यू कैन फाइट, समबडी इज इंस्पायरिंग कि यू शुड फाइट,
इनफैक्ट द अदर पर्सन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू फाइट,
इन फाइटिंग, यस एब्सोल्युटली, विच मीन्स कि बहुत डीप मैसेज जैसे कि ट्रांसमिट हो रहा है कि अगर आपके साथ कोई गलत करे या आपको अपना हक लेना है किसी से, तो हिंसा इज द वे, उसी से आपको मिलेगा। तो अब अगर हमने इसको इस तरह से ले लिया सीधा सीधा, देन इट्स ऑब्वियसली अ क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली, क्योंकि जबकि रिलीजन हमें सिखाता है पीस, रिलीजन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है फॉरगिवनेस, रिलीजन हमें सिखाता है लेट गो, छोड़ो उस बात को, हल्का कर दो, हार्मनी, लव, तो फिर रिलीजन हमें वायलेंस और वॉर तो नहीं सिखा सकता है। तो उसको हमने सही परिप्रेक्ष्य में या सही तरीके से नहीं लिया, स्पिरिचुअलिटी जो ट्रू मीनिंग है उस पर फोकस कराती है कि युद्ध की बात तो हो रही है डेफिनेटली, एंड युद्ध के लिए इंस्पायर भी किया जा रहा है, और युद्ध उनके साथ करना है जो तुम्हें तंग करते हैं, दिस इज द बेसिस ऑफ व्हाट इज रिटन, लेकिन वो एक सिंबॉलिक था और उसके पीछे का जो मीनिंग दिया जा रहा था उस समय वो ये था कि युद्ध तो करना है, युद्ध से ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी, और वो जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे हक को लिया है, उनकी हत्या करके विजय प्राप्त करनी है, लेकिन ये सारा कुछ अंदर करना था, और ये सारा कुछ शरीर ने नहीं आत्मा ने करना था, आत्मा को तंग कौन कर रहा था और आत्मा के हक को किसने छीना था, आत्मा के अपने विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देते थे, हमारे जीवन को उसकी ओरिजिनलिटी से और प्योरिटी से बहुत दूर लेके जा रहे थे। हमारा जो राज्य था वो था सेल्फ सॉवरेनिटी, स्वराज्य, शांति का, खुशी का, प्यार का। हमारा राज्य उसने छीन लिया था, हमारे अपने विकारों ने हमसे हमारा अपना राज्य छीन लिया था, हमारा अपने मन पर संयम नहीं था। इसका मतलब हम स्व पर राज्य नहीं कर पा रहे थे, हम कह रहे थे मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, और फिर कई बार तो हमारा मुख भी कंट्रोल में नहीं, और फिर कई बार तो हाथ भी कंट्रोल में नहीं। तो स्व का स्व पर राज्य खत्म हो गया था, और राज्य छीना किसने था? इन विकारों ने। लेकिन ये विकार थे कौन? अपने ही रिश्तेदार, क्योंकि अब हमारे विकारों को या उन संस्कारों को यूज करते करते वो संस्कार ही अपने लगने लग गए थे ना। वी से टुडे एंगर इज माय नेचर, स्ट्रेस इज द वे आई लिव। तो ये तो मेरे अपने बन चुके थे, ये वो कोई और नहीं थे, कोई बाहर नहीं थे। तो मुझे युद्ध करनी है अपनों से, लेकिन वो युद्ध अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से नहीं करनी थी, वो युद्ध अपने संस्कारों से करनी थी जिन्होंने मेरा राज्य छीन लिया था। ये हमें गीता ज्ञान दे रहा था, लेकिन क्योंकि सिंबॉलिक वे से उसको कैरेक्टर्स को लेके किया, और क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है, मेन थिंग वॉज दिस, जब हमें ये स्मृति आती कि जैसे ही मैं शब्द यूज हो तो वो मैं आत्मा है, तो मैं के आगे बाकी सारा कुछ जो लिखा होगा वो आत्मा के लिए है। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और मैं मतलब शरीर है, तो फिर मैं ने क्या करना है, वो सारा कुछ शरीर से जुड़ जाएगा। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और हमें युद्ध के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतलब वो युद्ध इस शरीर ने करना है, और किससे करना है? किसी और के शरीर से करना है। करना कहाँ है? कोई एक युद्ध स्थल है, वहां लोगों ने दूसरे लोगों से लड़ना है। वो कौन है? उसके अपने संबंधी, अपने रिश्तेदार। लेकिन एक मैं जब बदलेगा हमारी कॉन्शियसनेस कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द रिलीजन, आई एम नॉट द लेबल, आई एम नॉट द रिलेशनशिप, आई एम अ सोल, अब मैंने युद्ध करना है। तो आत्मा युद्ध कहां करेगी? आत्मा युद्ध अंदर करेगी। तो आत्मा ने युद्ध करना था, या कहें आत्मा ने अपने विकारों को खत्म करना था और अपना स्वराज्य फिर से, जो राज्य हम गवा बैठे थे, क्योंकि ओरिजिनली हर आत्मा पीसफुल, प्योर, लवफुल है, तो वो हमारा राज्य था। ओरिजिनली हर आत्मा का अपने ऊपर फुल कंट्रोल था, मन हमारे अनुसार चलता था। ये राज्य हम कहीं गवा चुके थे जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। तो गीता का ज्ञान हमें वो राज्य फिर से लेना है, अपने ही अक्वायर्ड संस्कारों से युद्ध करके वो गीता ज्ञान हमें सुना रहा है, वो सिखा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स द आर्ट ऑफ लिविंग, दैट्स व्हाई उसमें जीवन जीने की कला है, दैट्स व्हाई उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, और दैट्स व्हाई इट्स एप्लीकेबल फॉर एनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम।
लेकिन वहीं के पहले अध्याय में भी तो बात उन्होंने आत्मा की ही हुई है वहां पर। तो एक तरफ ये कि यही आई थिंक वजह चल रही है कि एक तरफ स्थूल युद्ध की बात हो रही है और दूसरी तरफ अपने से ही अपना परिचय।
Absolutely.
So unless or until I'll have the right thing, the way you said कि I में किसको मैं लेती हूँ,
सारी कहानी उसके बाद बदल जाएगी, सारी शिफ्ट, क्योंकि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गई ना।
हाँ।
आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है, एंड वो भी थोड़ी शिफ्ट नहीं हो रही है, दिन एंड रात का अंतर है। यू आर ईदर दिस साइड और यूर दिस साइड। तो अगर आप मैं शरीर पे शुरू हुए तो आपके अपने कौन? तो आपके अपने ये संबंधी, आपके दोस्त। युद्ध किसने करना है फिर शरीर ने? तो कुछ बाहर ही होगा। तो इस दिशा में चले गए, बॉडी एंड बॉडी रिलेटेड, मतलब फिजिकल। तो पूरी बात को जो उसमें थी हम फिजिकली देखते गए। अब इसी को जब गीता के पहले अध्याय में ही दिया है, मैं आत्मा, तो सब कुछ करना किसने है? मुझ आत्मा ने करना है। और एक्चुअली वो ज्ञान दिया ही किसी के लिए जा रहा था? आत्मा के लिए दिया जा रहा था। वो किसी उनके लिए नहीं दिया जा रहा था जिन्होंने अपना फिजिकल राज्य गवा दिया था और उन्हें अपने भाइयों से या अपने संबंधियों से अपना फिजिकल राज्य लेना था, वो हर आत्मा के लिए है वो. इसीलिए हमने कहा आज श्रीमद् भागवत गीता इज वर्ल्ड एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इवन आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. अगर वो किसी एक परिवार की दूसरे परिवार से युद्ध होती अपने राज्य को वापस लेने के लिए, आज हम क्या कर रहे होते उसके साथ? वो तो उस फैमिली की बात थी, उस फैमिली के साथ लड़ाई थी, आज हम क्या कर रहे हैं उसको लेकर?
वो उनके लिए एप्लीकेबल,
वो उनके लिए थी. अच्छा, अगर हम उसको लेते भी तो हम उसको एक स्टोरी की तरह सुन लेते, एक फैमिली के साथ फाइट. आज तो हम उससे लर्निंग ले रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग के लिए बनाई गई थी, लिखी ही हमारे लिए थी. तो उसको उस तरह से अगर हम समझेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दैट श्रीमद् भागवत गीता वायलेंस नहीं प्रवोक करती है. इट इज नॉट इंस्पायरिंग और इनकरेजिंग वायलेंस. इट इज टीचिंग अस द रिलीजन ऑफ पीस. इट इज टीचिंग अस द रिलीजन ऑफ सेल्फ सॉवरनिटी. और आत्मा जब अपना स्वराज्य फिर ले लेगी तो शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी जो उसकी ओरिजिनल थे वो वापस इमर्ज हो जाएंगे और पूरे जो जीवन जीने का तरीका है वो सारा बदल जाएगा.
लेकिन यहीं पे एक और जो जिसपे क्वेश्चन मार्क एक आ रहा है कि वायलेंस की बात, दूसरा ये कि कौन समझेगा. कि कहीं ना कहीं ये बात है कि सबको ही नहीं समझ पाएंगे कि अगर आपके पास बुद्धि में मूढ़मति है तो आपको समझ आएगा कि नहीं. तो ये भी कि अभी आपने कहा कि ये सबके लिए है, अगर उसी फैमिली के लिए होता तो हम उससे हम उसे नहीं ले सकते थे क्योंकि वो उसी के लिए, वहीं पे खत्म हो जाती बात. अब वो मूढ़मति कौन, क्या वो मेरे लिए है, क्या वो बाकी सारे रिलीजन्स के लिए है?
हम जब अब जो बात उठी है तो उससे तो जैसे ऐसे इंटरप्रेट हो रहा है कि एक रिलीजन के लिए है वो और बाकी रिलीजन्स को मूढ़मति कहा जा रहा है. लेकिन एक्चुअली जो एसेंस है कि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया तो परमात्मा ने कहा हरेक जो अपने धर्म से बिछड़ा हुआ है, अपना धर्म मीन्स आत्मा का धर्म, सोल कॉन्शियसनेस, जो आत्मा अपने धर्म को नहीं पहचानती, मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो वो आत्मा स्वयं को ही नहीं पहचानती. सो इट वॉज नॉट अबाउट अ रिलीजन विच वी आर सीइंग आउटसाइड, जो रिलीजन्स अभी क्रिएट हुए हैं, लेकिन इट वॉज फॉर द रिलीजन ऑल्सो ऑफ द सोल. जो आत्मा अपने रिलीजन को नहीं पहचानती और अपने रिलीजन की कॉन्शियसनेस में नहीं टिकी है, अर्थात जो आत्मा, जो आज हम अवेकनिंग पे कहते हैं कि हम सो रहे हैं, हम अज्ञान की नींद
अच्छा,
में सोए हुए हैं.
मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं हिंदू हूँ,
yes.
तो मैं उस कॉन्शियसनेस में जी रही हूँ.
Absolutely.
अगर मैं सिख की कॉन्शियसनेस में कि मैं सिख हूँ,
राइट,
तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि हाँ मेरा धर्म सिख,
राइट,
या मतलब वो आएगा. तो इसमें अब अगर मेरा
मैं आत्मा हूँ,
हाँ,
तो मेरी कॉन्शियसनेस में मेरा धर्म क्या है? सी, आज एक बच्चा पैदा हुआ, अगर एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, एक मुस्लिम परिवार में अडॉप्ट हो गया, अब शादी हो गई एक सिख परिवार में, व्हाट इज हैपनिंग टू द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड? बच्चा तो वही है ना. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलीजन क्या है. रिलीजन है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जिन्होंने एक बिलीफ सिस्टम्स को अडॉप्ट किया और उस बिलीफ सिस्टम्स को लेकर वो अपने परिवारों को, अपने पूजा प्रार्थना तरीकों को, एक अपने धर्म के स्थान को एक पर्टिकुलर तरीके से बना रहे हैं, जबकि सभी की टीचिंग्स सिमिलर थी. सिमिलर क्या, वी कैन से ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ तरीके थोड़े थोड़े अलग थे. तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बने. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स हिंदू, वेदर इट्स मुस्लिम, वेदर इट्स क्रिश्चियन, आर टीचिंग्स आर द सेम, विच इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल ग्रुप्स बिकॉज ऑफ किसने फाउंड किया वो रिलीजन, कौन फिर उसके साथ जुड़ते गए, धीरे धीरे ग्रुप्स बनते गए. लेकिन आत्मा का रिलीजन, क्योंकि हर ये रिलीजन भी वही सिखा रहा था, अब आई नीड टू अंडरस्टैंड हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग इन माय फैमिली. नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम सेइंग आई एम अ हिंदू, इट्स नॉट आई एम अ हिंदू, इट इज हिंदुइज्म इज द वे ऑफ लिविंग इन द फैमिली वेयर आई बिलोंग.
धर्म को भी कहा जाता है कि धारण किया जा सके,
वेरी इंपॉर्टेंट. वो धारण
रूल्स एंड रेगुलेशन
तरीका है जीने का, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है. आई एम अ हिंदू, हमने बहुत, जैसे इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इंडिया में रहती हूँ, वी हैव स्टार्टेड सेइंग आई एम एन इंडियन. इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन है, बिजनेस हम करते हैं, हमने कहना शुरू किया आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बिजनेसमैन। तो हमने सारी जो एक्सटर्नल चीजें थी, जो हम कर रहे थे, जो हमारा प्रोफेशन था, जिस कास्ट में हम पैदा हुए थे, हमने उन्हीं को क्या बनाना शुरू कर दिया, दिस इज मी। यू नो, जैसे इवन कास्ट, आज कोई शर्मा है, कोई अग्रवाल है, टेबल से मैं शर्मा हूं, मैं शर्मा नहीं हूँ, मेरा सरनेम है, मैं उस कम्युनिटी में या उस ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करता हूँ। हर अक्वायर्ड चीज को हमने मैं के साथ जोड़ दिया। उसी तरह मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, हम सब एक दूसरे से क्या हो गए, डिवाइड हो गए। सो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है मैं आत्मा हूँ, एंड मुझ आत्मा के ये अलग अलग चीजें हैं। कोई मेरा रिलीजन है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कोई मेरा प्रोफेशन है, कोई मेरी कम्युनिटी है, ये सब बाहर है। तो जब श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा जा रहा है कि जो मूढ़मति हैं, वो नहीं पहचानते हैं परमात्मा को, या वो जीवन जीने का तरीका सही तरह से नहीं जीते हैं, तो वो उन सभी के लिए कहा जा रहा है, हम सभी के लिए कहा जा रहा है जो अपने को नहीं पहचानते कि मैं आत्मा हूं और मुझे कैसे जीवन में चलना है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तो मतलब हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं, तो ऑब्वियसली द होल साइकिल विल गो द अदर वे राउंड। एंड परमात्मा ने आकर यही शिफ्ट किया है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ। तो हम सब जो अभी अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, और अज्ञान कौन सा, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं है, तो हम सोए हुए हैं। हम सब जो सोए हुए हैं उनको कहे जाएगा कि मूढ़मति है, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं पहचान रहे, और जो जो अपने को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूं, उनकी ये अवेकनिंग है। तो श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हम सबको उस अज्ञान की नींद से उठाकर ज्ञान की तरफ लेके जाने के लिए है, प्रोवाइडेड वी टेक द मीनिंग्स ऑफ इट। इट वॉज मेंट टू गिव मीनिंग्स, इट वॉज मेंट टू गिव नॉलेज, इट वॉज मेंट टू चेंज वे ऑफ लिविंग।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन का और किसी भी फिलॉसफी को मानने वाला व्यक्ति जो है वो इससे सीख सकता है।
सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता ही नहीं, हम बाइबल ले, हम कुरान ले, हम गुरु ग्रंथ साहिब ले, हम कोई भी होली किताब ले, इजंट इट फॉर ईच वन ऑफ अस। हमने उसको डिवाइड कर दिया, हमने कहा हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं, हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमने कहा हम सिर्फ इनको मानते हैं, हम सिर्फ इनको मानते हैं, तो हमने पढ़ाई नहीं बाकियों को, हमने स्टडी नहीं किया, यहाँ तक कि जो एक जिसको हम पढ़ रहे थे उसको भी पूरी तरह से स्टडी नहीं
उसको
किया,
भी हमने सिर्फ पढ़ा ना, पढ़ के बार बार उसको हमने
स्टडी नहीं किया, एंड स्टडी नहीं किया एंड उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता नहीं, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, सारी होली बुक्स, इट्स फॉर ईच वन ऑफ अस, बिकॉज देयर ईच वन इज टीचिंग अस द वे ऑफ लिविंग। और आज हम सब अगर अपने जीवन को देखें, वी हैव फॉरगॉटन द वे ऑफ लिविंग, वी हैव फॉरगॉटन द वे ऑफ थिंकिंग, एंड हमने एक बिल्कुल अलग तरीका यूज करना शुरू कर दिया है जीने का। विश्वास करना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्र सिखाते हैं, आज दुनिया हमें सिखाती है, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों पे। कितने लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं गुस्से के बिना काम करना है, तो आसपास के लोग बोलते हैं कभी कभी गुस्सा किया करो। सो वी हैव गॉन 360 डिग्री शिफ्टेड फ्रॉम जो हमें सिखाया जा रहा था टू जो आज हम हो चुके हैं।
ट्रुथ को लेकर, वैल्यूज को लेकर,
ऑनेस्टी डजंट वर्क, ऑनेस्टी डजंट वर्क टूडे इज वॉट इज बींग टॉट टू अस और वॉट इज देयर इन सोसाइटी। तो वो समय आ चुका है कि हम अपने इन धर्म शास्त्रों को, धर्म पुस्तकों को अब फिर से पढ़ें और उनको समझें और उनको तुरंत यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारे लिए लिखे गए थे। और इन सब में अगर कोई भी सभी को स्टडी कर ले, वो एक ही बात कहता है उसके एंड में, एंड विच इज सभी एक ही बात कह रहे हैं, सभी एक ही बात कह रहे हैं, चाहे वो आत्मा के बारे में है तो सभी एक ही बात कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, स्पिरिट हूँ, बॉडी नहीं हूँ, लाइट हूँ, हर एक कह रहा है, मन तू ज्योत है, हर एक ये कह रहा है, चाहे परमात्मा की बात ले ले तो उसमें कह दिया तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं नाम रूप से न्यारा हूँ, मैं जो हूँ तुम मुझे पहचान नहीं सकते। या कोई कह रहा है नूरे इलाही, कोई कह रहा है गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, कोई कह रहा है एक ओंकार निराकार, उंगली हमेशा ऊपर,
और सत्य नाम,
सत्य सत्य है, कह रहा है गॉड इज ट्रूथ। कहाँ डिफरेंस है? कहीं भी डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था वो छोटे छोटे रिचुअल्स, छोटी छोटी चीजें जो हमने करनी शुरू की, लेकिन जहां तक रिलीजन की टीचिंग्स की बात थी कहीं भी डिफरेंस नहीं था। दे वर ऑल गिविंग द सेम। सो इट्स टाइम टू रियली नाउ वेक अप, पिक देम अप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड देम, नॉट रीड देम। यू नो, बहुत बार हम ब्रह्मा कुमारीज में, बिकॉज यही संपर्क होता है बहुत सारे लोगों से, और बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड फैमिली, तो सभी रिलीजन्स एंड यू नो एवरीबडी इज हियर, एंड हर एक अपने अपने यहां आने से पहले कोई गुरु ग्रंथ साहिब रोज पढ़ते थे, कोई कुरान रोज पढ़ते थे। आई यूज टू रीड बाइबल एवरी डे फॉर 15 years, एवरी डे बाइबल इन स्कूल, घर पे तो कुछ और धर्मशास्त्र पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे। लेकिन जब हम परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान जो अब हमें मिल रहा है उसको लेते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बात वही है जो रिलीजन ने बाद में हमें सिखाई, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो ईच वन ऑफ अस इज सेइंग कि जो हमें रिलीजन सिखा रहा था अब हमें समझ में आया,
लिखा था ये तो हमने पढ़ा हुआ था।
सब कहते हैं जब परमात्मा का ज्ञान स्टडी करते हैं ना, तो कहते हैं ओ ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, ये तो श्रीमद भागवत गीता में लिखा है, ये तो बाइबल में लिखा। एवरीवन सेज दैट, एंड बट नाउ व्हाट वी गेट इज अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लिसिटी एंड उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। तो हर एक अगर अपने धर्मशास्त्र को एक बार फिर से उठाए, उसको पढ़ें, उसके साथ जो बुनी हुई बातें हैं या उसको समझाने के लिए जो कहानियां बनाई गई हैं, उसी तक ना अपने मन और बुद्धि को सीमित रखें, लेकिन वो बातें जो हमें संदेश दे रहे हैं और जो बहुत आज भी एप्लीकेबल है, वो उस समय के लिए नहीं, वो यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं, वो आज भी एप्लीकेबल हैं, उसमें से एक एक बात को ले और उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। सिर्फ हमें किसी ने एक्चुअली समझाया नहीं कि उसको यूज कैसे करना है। यू नो, मैं आत्मा हूं, सुना, पढ़ा, फिर बंद किया, बाहर गए तो मैं बॉस हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। नोबडी टॉट अस कि जब बाहर जाओगे ऑफिस और घर, मैं आत्मा हूं, वो करना है, वो है, दैट्स रियलिटी। तो इसलिए हमने रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ से अलग किया। फिर हमने कहा कि जब रिटायर होंगे और सब फ्री हो जाएंगे सब चीजों से, तब रिलीजन को स्टडी करेंगे, तब स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करेंगे। ये तो हमें अपना परिचय दे रहा था, तो इन बातों को अब लेना है और जीवन में लेकर जाना है। उस टाइम के लिए नहीं रखना है जब मंदिर में है या गुरुद्वारे में है, चर्च में है। इट हैज टू बी टेकन बैक इनटू आवर वे ऑफ लिविंग एंड देन रियलाइज द पावर ऑफ व्हाट आवर रिलीजन इज टीचिंग अस।
एंड दैट्स सो ट्रू एक्चुअली कि हम खुद की स्थिति में है, तो हमने जो प्योर और जो पूरा एक कंप्लीट थी उनमें भी हमने वो उस तरह से इंटरप्रिटेशन शुरू करने शुरू कर दिए, और तभी फिर वो आज की स्थिति में पहुंचते हैं। शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी क्लेरिफिकेशन के लिए।
थैंक यू।
अब हमें देखने की जरूरत है कि हम कहां खड़े हैं और कैसे चाहते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात जो समझ में आई कि चाहे हमारे अपने ही धर्म ग्रंथ है या फिर किसी भी धर्म का, अगर वो होली बुक है, उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये, क्योंकि कितनी बार हमें कहा जाता है कि प्रेम करो सबके साथ, और कितनी सारी बातें सिखाई जाती हैं, कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो रोल प्ले आज समझ में आया कि कोई भी कहानी, अगर कहानी के रूप, बात अगर कहानी के रूप में कही गई, तो उसका जो रिटेनरशिप जो मेरे पास रहेगा वो ज्यादा देर तक रहा जा सकता है। तो फिर आगे बॉल इज इन योर कोर्ट, हम कैसे इसको लेना चाहते हैं ये हमें देखना है। आज की इस बातचीत में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।